సమాధాన్ సమాధాన్ సమాధాన్
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, एक छोटा सा बच्चा जो पढ़ाई पढ़ता था, स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाता था, तो वो घर घर जाके कुछ सामान बेचा करता था ताकि वो अपने स्कूल की फीस जमा कर सके। एक बार उसका सामान कहीं भी बिका नहीं, उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। उसने सोचा कि अब जिस भी दरवाजे पे मैं जाऊंगा, नॉक करूंगा, जो भी बाहर आएगा उससे मैं खाना मांग लूंगा। नॉक किया उसने, देखा एक यंग लड़की बाहर आई। अब उसने सोचा कि इससे मैं कैसे मांगू, तो बोल नहीं पाया। उसने कहा कि मुझे एक ग्लास पानी पिला दीजिए, लेकिन वो लड़की भाग गई कि इस लड़के को बहुत भूख लगी है, लेकिन शायद संकोचवश ये बोल नहीं पा रहा है। वो अंदर से एक ग्लास दूध ले आई, उस लड़के को दिया। लड़के ने संकोच करते हुए सही ग्रहण किया, पिया, उसके अंदर एक ताजगी आ गई थी। लड़के ने पूछा कि इस एक गिलास दूध का मैं क्या कीमत अदा करूं। लड़की ने कहा कि नहीं, मेरी माँ ने कहा है जब भी किसी की मदद करो तो उससे पैसे नहीं लेने चाहिए, तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। खैर, लड़के ने धन्यवाद अदा किया और वहां से चला गया। बहुत वर्ष बीत गए, लड़की बड़ी हो गई थी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। उसे उस छोटे कस्बे से बड़े शहर में रेफर किया गया। जब वहां गई, उसका ट्रीटमेंट किया गया, तो जिस डॉक्टर को बुलाया गया वो डॉक्टर वही था, डॉक्टर होवार्ड केली उनका नाम था। सत्य घटना है मित्रों। जब उसने वार्ड में जाके देखा कि ये तो वही लड़की है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि उस एक ग्लास दूध का कर्ज चुकाने का अब समय आ गया है। बहुत जी जान से उन्होंने उसकी सेवा की और साथ ही साथ उन्होंने ये पाया कि बहुत जल्दी वो ठीक भी हो गई है। अब बिल की बारी आई, डॉक्टर गए वहां पे जहां पे बिल बनाया जाता है। बहुत लंबा चौड़ा बिल था, लेकिन नीचे उन्होंने कॉर्नर पे एक छोटा सा नोटिस लिख दिया कि एक ग्लास दूध के बदले में आपका ये सारा बिल माफ किया जाता है। ये बिल उसके पास गया, लड़की के पास। जब उसने देखा तो उसे पढ़ करके वो घटना याद आ गई और उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। मित्रों, जब कभी आवश्यकता होती है किसी व्यक्ति को, चाहे वो हमारा अपना हो चाहे पराया हो, तो ऐसे मदद के समय यदि हम मदद करते हैं, जब उस व्यक्ति को सचमुच आवश्यकता होती है, तो वो दिल से हमें शुक्रिया अदा करता है। और यही वास्तव में मानवता है। इसलिए जब कभी आपको अपने आसपास ऐसे लोग दिखाई दें जिनको सचमुच हमारी मदद की आवश्यकता हो, तो जरूर आप ये दुआ उनसे अवश्य ग्रहण किया कीजिए। इस सुंदर प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया।
व्यक्ति उन चीजों को याद नहीं रखता भ्राता जी, सामान्यतः जो चीजें दिनचर्या में घटित हो रही हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा तड़पन होती है, आवश्यकता होती है, तब हमें कुछ मदद मिल जाती है, जीवन भर उसका एहसान मानते हैं हम।
बिल्कुल। और आज भी बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो एक दूसरे को मदद करते हैं, भले अपनों को ही सही
जी,
पर मदद करते अवश्य हैं। और ये भी सत्य है जो इस कहानी से हम सीखते हैं कि दूसरे को मदद करके कुछ लेना उचित नहीं है। शायद तब उसको बिल चुकाने में बहुत मेहनत पड़ती, तो एक दूसरे को मदद करना ये मानवता है, और मदद के बदले कोई एक्सपेक्टेशन न रखना ये देवत्व है। तो हमें इन चीजों का जीवन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मैं कहूंगा ये बहुत बड़ा पुण्य है जिसकी चर्चा हम करते हैं, कि हमें अपने पुण्य की पूंजी बढ़ाते चलना चाहिए। दूसरों को मदद करना, असहाय को सहारा देना, किसी बीमार व्यक्ति की इस तरह मदद कर देना, ये सचमुच मानवता है।
जी जी। मतलब जिस ढंग से भी हम सामने वाले को मदद कर सकें, चाहे वो मन से हो, तन से हो, धन से हो, वो मदद अवश्य हमें करनी ही चाहिए। दादा जी, एसएमएस की ओर लिए चलता हूँ आपको। ये पहला एसएमएस हमारे पास देवांग जी ने भेजा है और ये कहते हैं कि भ्राता जी, मेरे अंदर घबराहट का जो संस्कार है वो बहुत ही ज्यादा है, मैं इसे समाप्त करना चाहता हूँ, कृपया बताएं मैं क्या करूँ।
ठीक है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम युवकों के आगे भी आजकल हैं, और राजयोग इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मेरे पास कईयों के अनुभव हैं जो बचपन से ही बहुत हिचकिचाते थे, कहीं बोलते हुए भी उन्हें डर लगता था, और कहीं अगर अकेला जाना हो तो वो कहते थे अकेला नहीं, कोई साथ हो मेरे तब मैं जाऊं। जहां उन्हें रोज जाना वहां भी वो अकेले जाना से घबराते थे
जी।
और जब राजयोग का अभ्यास किया और विशेष रूप से फीलिंग हुई कि सर्वशक्तिवान की शक्तियां हमसे जुड़ी रहती हैं, और एक विशेष बात जो नोटिसेबल है कि जहां भगवान का साथ है वहां हमारे साथ कुछ अहित होगा ही नहीं, हमारा कोई नुकसान होगा ही नहीं। बाबा ये बात बहनों माताओं को कहा करते थे, देखिए हमारे यहाँ सवेरे जल्दी क्लास हो जाती है, उन दिनों 6 बजे ही होती थी, तो दिल्ली में माताएं दूर दूर से बस पकड़ के आया करती थी, माताएं जेवर पहनती थी। आजकल तो डर के कारण ये बस खत्म ही हो गई ये बात, किसी की चेन लूट ली जाती है, किसी को और कुछ, किसी का तो हाथ ही काट दिया था उन दिनों, एक हाथ में बहुत सारे जेवर थे, वो ऐसे किए बैठी थी बस में, हाथ ही काट के वो हाथ उठा के ले गए, तो बहुत डर था। तो बाबा से पूछा गया, बाबा जी सवेरे सवेरे आते हैं क्या करें, डर तो लगता है। तो बाबा ने उन्हें बहुत अच्छी बात सिखाई थी कि अगर तुम शिव बाबा की याद में रहो तो तुम्हें देखकर किसी को कुछ लेने का संकल्प भी नहीं आएगा, तुम एक थप्पड़ भी नहीं लगा सकेगा, तुम बहुत सुरक्षित रहोगे। तो ये सब बातें सुन के बहुत लोगों में निर्भयता आई, माताओं में निर्भयता आई। तो इनको भी मैं यही कहूंगा, रोज सवेरे उठकर पहले तो 7 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, बिल्कुल गुड फीलिंग के साथ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, और सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ है। इसके बाद 108 बार लिखेंगे शांत में बैठकर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इनके अंदर जो घबराहट है, इसके गुरु जन्मों के कुछ कारण हो सकते हैं, बचपन के भी कुछ कारण हो जाते हैं मनुष्य के अंदर। मान लो बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसने उनको डरा दिया, मान लो एक सांप ही आ गया था सामने से और फुंकार ऐसे मार के खड़ा हो गया और बच्चा डर गया, एकदम बेहोश होके गिर गया, तो वो उसके अंदर घबराहट सदा के लिए जैसे भर गया। ऐसी कई घटनाएं हो जाती हैं, बच्चे कुछ देख लेते हैं, कहीं एक्सीडेंट होता देख लिया तो डर गए बच्चे। पूर्व जन्मों के भी ऐसे कुछ हो सकते हैं, मृत्यु बड़ी कष्टकारक हुई हो, किसी ने ऐसे बहुत सताया हो, तो भय लेकर आत्मा साथ में आ गई है। तो एक तो ये अभ्यास करेंगे, इससे वो चीज समाप्त होती जाएंगी और शक्तियां आत्मा में बढ़ती जाएंगी। दूसरा है, ऐसे मनुष्य को ज्ञान का भी बहुत बल चाहिए ताकि अंदर में सुंदर मनन चिंतन होता रहे। इसके लिए हम सदैव कहते हैं कि हमारे सेवा केंद्रों पर रोज क्लास होती है सवेरे, अब 7 बजे होती है, सब वहां जाकर क्लास अटेंड करें। क्लास माना ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मनुष्य के विचारों को महान भी बनाता है और शक्तिशाली बनाता है। तो बाबा जैसे रोज आत्माओं में शक्ति भरता है उस टाइप, धीरे धीरे करने से इनमें शक्ति आ जाएगी। और एक तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, कईयों में बोलने की हिचकिचाहट होती है, लोगों के बीच में रहने से कुछ घबराहट होने लगती है, भले इसमें कुछ मेडिकल बात भी हो सकती है। ऐसे में हमारे यहाँ एग्जीबिशंस लगती हैं, हम लोग सेवा करने के लिए गांव गांव में, टाउन टाउन में अपनी एग्जीबिशन लगाया करते हैं, ग्रुप्स आते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो ये भी समझाने का काम प्रारंभ करें। तो धीरे धीरे पहले गांव की माताओं को समझाए, उसमें लगेगा अरे मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, फिर और किसी ग्रुप को समझाए, फिर और इसमें उमंग उत्साह आएगी, फिर औरों को समझाए, जब इसे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है देने के लिए। और लोगों को समझाना तो बहुत इजी है, कोई कुछ कहता थोड़ा ही है, कोई मारता थोड़ा ही है, मैं तो ऐसे ही अननेसेसरीली डर रहा हूँ, तो वो दिल खुलता जाएगा, भय खत्म होता जाएगा। तो इस तरह लोगों के बीच में जाने का भी मौका मिलेगा, और जो एक हिचकिचाहट है वो भी दूर होगी और घबराहट भी समाप्त हो जाएगी।
पहले ही 2-4 बार कोई कुछ कह भी दे, लेकिन उससे भी कई बार ऐसा भी होता है कि हमने बोलना शुरू किया और सामने वालों ने कुछ गलत कमेंट कर दिया कि ये क्या है, कुछ भी बोल रहे हो, बोलना नहीं आते हो, हकलाते हो, हिचकिचाते हो, तो बंदा और घबरा जाता है कि नहीं नहीं अब से मैं नहीं बोलूंगा। तो ये स्थिति भी नहीं होनी चाहिए शायद।
स्थिति ये उनसे कुछ कोई कुछ बोल रहा है तो कहे हाँ हाँ बिल्कुल अब और अच्छा बोलेंगे, आप चिंता ना करो, सोचो नहीं, और अपने को भी तैयार करे कि मैं अब और अच्छा बोलूंगा। इससे हमारे टैलेंट्स में वृद्धि होगी, कोई कुछ कहे मुस्कुरा दें तो वो अंदर घबराहट भी नहीं होगी, हिचकिचाहट भी नहीं होगी, और कहें ठीक है चेंज करेंगे, ये बात ऐसे नहीं, और अच्छी तरह से आपके सामने रखेंगे।
जी, जी।
तो इस तरह लाइट रहने से वो चीज वहीं समाप्त हो जाएगी।
बिल्कुल, क्योंकि कई लोग रहते हैं जी इस चीज को लेके भी शायद पीछे हट जाते हैं कि क्यों खामखा लोगों के कॉमेंट सुने जाएं उल्टे सीधे, और शायद हम योग्य नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, ये स्थिति शायद उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती है, इसे दूर किया जाए। अगला एसएमएस ब्रदर जी हमारे पास आया है, ये कहते हैं कि ओम शांति भाई जी, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, मैं पीएचडी इंग्लिश में कर रही हूं और प्रोफेसर बनना चाहती हूं, लेकिन मैं नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रही हूं, 4 बार असफल हो चुकी हूं, लेकिन जब मैं बाबा को याद करती हूं तो सिर्फ उन्हें ही याद करने का मन करता है, जैसा आप अभ्यास बताती हैं वैसा अभ्यास मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरा ध्यान केवल बाबा में ही लग जाता है। कृपया बताएं कि मैं सक्सेसफुल कैसे बनूं।
इनको अब अपना नेट क्लियर करना बहुत आवश्यक है। पीएचडी भी इनकी हो जाएगी, नेट भी क्लियर हो जाएगा तो लेक्चरशिप इनको मिल जाएगी और ये जल्दी आगे बढ़ जाएगी। तो योग युक्त होना ये एक चीज है जिससे हमें शक्तियां मिलती हैं, लेकिन ये जो एजुकेशन के फील्ड हैं इनमें सफल होने के लिए मनुष्य को बौद्धिक विकास की भी बहुत जरूरत होती है ना। केवल शक्तिशाली होने से ही तो काम नहीं चलेगा। अब एग्जाम में तो उन क्वेश्चन का आंसर देना ही है। तो राजयोग के अभ्यास से बुद्धि का विकास भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए जब ये योग करें तो एक संकल्प के साथ योग कर लें कि बाबा बुद्धि दाता है, तो वह संकल्प कर लें उससे मुझे ऐसी बुद्धि मिले जो मैं अपना नेट क्लियर कर लूं। सवेरे उठ के भी ये 7 बार याद करें, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। फिर अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जब एग्जाम देने जाएं इस बार एक विजन भी बना ले कि मेरा क्लियर हो गया है, नेट पे मेरा आ गया है नाम, कितने अंक हैं वो सब मैं देख रही हूं, मैं एंजॉय कर रही हूं, बस क्लियर हो गया है, तो अच्छी तैयारी भी कर ले, उस टाइम भी ये प्रैक्टिस करे और बाबा से श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान भी ले, बस नेक्स्ट टाइम इनका क्लियर हो जाए।
बिल्कुल बिल्कुल कदम जी, एक चीज जो इन्होंने कही है कि ये जो अभ्यास जैसे आप बताते हैं उन अभ्यासों को न करके, मतलब उनमें ध्यान न जाके जैसे बाबा से ही जुड़ जाता है, मतलब शायद ये ऐसा सोच रही होंगी या कह रही होंगी मेरे ख्याल से कि मैं ये प्राप्त करूं उसके लिए योग करने की बजाय मैं शायद विश्व कल्याण के लिए या आत्म आनंद के लिए मैं योग युक्त हो जाती हूं, ऐसी स्थिति बन जाती हो तो क्या किया जाए?
नहीं, वो तो बहुत अच्छी है ही, लेकिन कुछ समय, क्योंकि इनको भी इसकी जरूरत है, तो कुछ समय के योग अभ्यास को इसके लिए भी यूज कर लेना चाहिए और उसमें विशेषकर बुद्धि को ओपन अप करने के लिए, बुद्धि को डिवाइन करने के लिए, उसमें जो बहुत कुछ समाया है उसके टैलेंट्स को बढ़ाने के लिए। तो वो विश्व कल्याणकारी योग तो हमें सदा करना ही है, निष्काम भाव से योग भी सदा करना है, लेकिन मनुष्य को जब कोई विशेष कार्य करना हो तो उसमें सफल होना ये भी तो एक बहुत बड़ी चीज है ना, अपने कल्याण के लिए भी तो जरूरी है। ऐसा तो ना हो कि हम विश्व कल्याण तो कर रहे हों और खुद परेशान रहते हों, इसलिए थोड़ा सा समय आत्म कल्याण के लिए भी दे देने से कोई हर्जा नहीं है, उसमें फायदा ही फायदा
है। कई बार लोग बोलने लगते हैं कि बड़े आए हैं योग वो करते हैं, खुद का तो कुछ हो नहीं रहा है, दुनिया का करने चले हैं, तो खुद का हो जाएगा तो लोगों की बोलती भी शायद बंद हो जाएगी। दादा जी, अगला हमारे पास जो SMS है ये कहते हैं, मैं 60 साल का हूँ और पिछले 8 महीने से मैं विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, पीस ऑफ माइंड चैनल मैं देखता हूँ, मुरली क्लास भी सुबह सुनता हूँ और शाम को योग के लिए भी सेवा केंद्र पे मैं जाता हूँ, लेकिन मेरा जो योग है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मन एकाग्र नहीं हो पाता है और कई बार विकारी संकल्प भी आते हैं। पहले मैं तंबाकू खाया करता था, अब वो आदत पूरी तरह छूटी तो नहीं है, कभी कभी खा लेता हूँ लेकिन मैं उसे पूरी तरह छोड़ना भी चाहता हूँ, कृपया समाधान बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। 60 वर्ष की उम्र है बेटा जी इनके और ये समस्याएं हैं।
तंबाकू छोड़ने के लिए तो एक बहुत अच्छी और सिंपल सी प्रैक्टिस ये करते रहे, विद गुड फीलिंग, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, अपने देव स्वरूप को ये सामने लाया करें। दूसरी चीज कि एक विजन बनाएं कि मैं तंबाकू खा रहा हूँ और ऊपर बाबा देखकर मुझे मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा बच्चा जिसको ईश्वरीय नशे में रहना चाहिए तंबाकू के नशे में जा रहा है, तो जैसे बाबा ऊपर से खिलखिला रहे हैं कि बच्चे संभलो, ये क्या, तुम्हें तो ईश्वरीय नशे में रहना है, तुम्हें तो ये सांसारिक नशों से सबको छुड़ाना है, इससे इनमें जागृत आती रही, जागृत होते रहेंगे और इनमें बल बहुत आता रहेगा। रही बात योग अभ्यास की, देखिए एकाग्रता योग अभ्यास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है और कुछ लोगों का मन बचपन से ही एकाग्र नहीं होता है, तो कुछ लोगों ने उसको अपने युवा काल में भटका दिया होता है, और तीसरे वो लोग हैं जो बुजुर्ग होने पर दुनिया भर की बातें उनके पीछे लगी हुई हैं, तो मन भटका हुआ है, सोचता था मनुष्य कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब प्रभु की ओर बढ़ेंगे, लेकिन जब बूढ़े हुए तो दुनिया भर का दबाव सिर पर है और दुनिया भर के व्यर्थ संकल्पों का बोझ मन में उठाए चल रहे हैं, तो योग युक्त होने का रस नहीं आता। और फिर जो पूरा जीवन विषय विकारों में व्यतीत किया है, वो संस्कार भी तो एक दिन में जाएंगे नहीं, वो भी इमर्ज होते। ऐसा तो नहीं कि राजयोग के पथ पर कदम रखे और पहले दिन से आत्मा पवित्र हो गई और कुछ याद नहीं आएगा, वो सब भी उन्हें परेशान करते रहते हैं। इसके लिए इनको 6 मास तक बहुत अच्छी तरह 6 मास का ये एक सुंदर प्लान बनाएं। रोज सवेरे उठें, 3:30 उठकर एकांत में रमण करें, हो सके तो सवेरे उठकर एक 10 मिनट अव्यक्त महावाक्यों की स्टडी कर लें ताकि मन में सुंदर विचार उत्पन्न होने लगें। थोड़ी देर घूमकर 15-20 मिनट 4 बजे से ये योग में बैठें और योग में पहले 5 स्वरूपों का अभ्यास करें। 5 स्वरूपों के अभ्यास में पहला है हमारा अनादि स्वरूप आत्मा, दूसरा है आदि हमारा देव स्वरूप। ये हमारे आश्रम पे बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है कि जब तुम इस सृष्टि पर आए तुम देवता थे, फिर तुम ही पूज्य रहे भक्ति में, तुम ही अब ब्राह्मण बने हो और अब तुम्हें फरिश्ता बनना है। ये हमारे 5 स्वरूप हैं, इनको ये 5 बार याद करें। पहले 1 मिनट में 5 कर ले, फिर 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 में, 5 में, ऐसे करें। इससे इनके अंदर का देवत्व, इनके अंदर की प्योरिटी जागृत होगी और मन की एकाग्रता भी बहुत बढ़ेगी। इसके बाद पहले ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा हूँ यहाँ इस देह से अलग, और आत्मा का बहुत अच्छा चिंतन, आत्मा के स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे। देखिए थिंकिंग एंड विजुअलाइजिंग दोनों ही आवश्यक हैं। आत्मा को देखें यहाँ अति सूक्ष्म, किरणें फैल रही हैं मुझसे, गोल्डन किरणें फैल रही हैं। देखें अपना स्वरूप, चाहे 5 सेकंड देखें बस, और चिंतन करें मैं आत्मा तो शांत हूँ, बहुत सुखी हूँ, प्रेम से भरपूर हूँ, मैं तो परम पवित्र हूँ। फिर से बाबा की ओर बुद्धि ले जाएं, उसके स्वरूप को देखते हुए उसके गुणों का चिंतन करेंगे। स्वरूप देख रहे हैं महाज्योति ब्रह्मलोक में, वो सर्वशक्तिवान है, वो तो उपतित पावन है, सबके मुक्ति दाता है, सबके दुख हरने वाले हैं। थोड़ी देर वो करें, फिर आत्मचिंतन पर आ जाएं, फिर परमात्म चिंतन। 10 मिनट में ये ड्रिल करते रहें, इस ड्रिल से बुद्धि एकाग्र होगी, योग का रस आने लगेगा और बहुत अच्छी अनुभूति होगी। फिर बाबा को सामने देखते हुए उनसे कुछ बातें करने लगे, अपने जीवन की कुछ भी बातें करें, बाबा के गुणों की चर्चा भी करें, बाबा से मीठी मीठी रू ध्यान करें, बाबा आपने मुझे ये दिया, उसको शुक्रिया अदा करें। तो इस तरह धीरे धीरे अभ्यास करने से, लेकिन 6 मास का इन्हें प्लान बनाना है। पहले दिन से थोड़ी थोड़ी सफलता, हफ्ते तक जाते जाते बहुत अच्छी सफलता, फिर टाइम बढ़ाते चलें, फिर ध्यान दें सारा दिन भी कुछ अच्छे अभ्यास करने हैं और सारा दिन व्यर्थ बातों से मुक्त। 6 मास का ये प्लान बना लें, थोड़ा एकांत रमण भी रोज करें आधा घंटा, अपने से बात करें, अपने अंदर जाकर निहारें, ऑब्जर्व करें खुद को, टीवी आदि को थोड़ा थोड़ा सारा दिन न लगे रहें। इस तरह यदि 6 मास का प्लान बनाएंगे तो इन्हें जीवन भर योग के सब्जेक्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और एक सुखी जीवन, एक योग युक्त जीवन, प्रभु मिलन के सुंदर अनुभव इनके जीवन में शुरू हो जाएंगे।
जी जी जी, चलिए रता जी, हम भी कामना करेंगे, ऐसे ही कामना ये भी करते होंगे कि मेरे जीवन में ये सारी चीजें आए। वैसे भी 8 मास ही हुए हैं, इसलिए थोड़ा संघर्ष तो रहता ही है, क्योंकि आपने कहा बहुत सारी चीजें अभी भरी हुई हैं, वो सब निकल के बाहर आ जाती हैं, तो एकाग्रता नहीं हो पाती। ये सुंदर अभ्यास ये हो जाएगा। अगला ऐसे में हमारे पास ब्रता जी आया हुआ है, ये कहते हैं ओम शांति ब्रता जी, मेरे फ्रेंड की दादी जी बहुत बीमार हैं, उनकी आयु 90 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, उनकी आत्मा शरीर से मुक्त नहीं हो पा रही है, क्या हम कुछ ऐसे योग का अभ्यास कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में रहती हैं, कृपया सजेस्ट करें।
बात तो बहुत अच्छी है
जी,
90 वर्ष लंबी आयु हो गई, लंबी आयु में मनुष्य के शरीर में कई बीमारियां भी आ जाती हैं, न जाने क्या क्या होने लगता है, तो मनुष्य पीड़ित भी होने लगता है, वो भी चाहता है भाई मैं इस देह से मुक्त हूँ, और बच्चे पोतरे वो भी सब बहुत बड़े हो गए, पोतरे भी यंग हो गए, वो भी चाहते हैं अब दादी जी मुक्त हो जाएं, बुढ़िया गुड़िया बन जाए अब अब बुढ़िया तो कष्ट सह रही है, गुड़िया बन के आनंद प्राप्त करे। तो सभी इनके लिए बहुत अच्छी शुभ भावनाएं रखेंगे और मुख्य बात यह होती है कि इनका अंतिम सफर बड़ा सुखदायी हो, अंतिम सफर में कष्ट न हो। ऐसे नहीं ये हॉस्पिटल में पड़े पड़े हाय हाय करते कराते हुए शरीर छोड़े और सबको लगे देखो क्या हो गया है, इतनी लंबी आयु हमें तो चाहिए नहीं भाई, एक सुख भरा सफर इनका पूर्ण हो। तो इसके लिए जो भी इनके घर में राजयोग का अभ्यास करते हो वो एक घंटा रोज इनके लिए योगदान करेंगे। ये काम 21 दिन तक करेंगे, दो स्वमान उससे पहले याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर मुक्ति दाता हूँ। और फिर संकल्प करें ये आत्मा अब सुख पूर्वक सहज भाव से इस देह से मुक्त होकर बाबा की गोद में चली जाए। तो 21 दिन में योग अभ्यास से क्या होगा, इनके वो भी कर्म नष्ट हो जाएंगे जो इनको इस देह में बांधे हुए हैं।
क्या पहले प्रयास ये नहीं होना चाहिए बेटा जी कि ये ठीक हो जाएं, इनकी तकलीफें दूर हो जाएं और ये शतायु हों?
देखिए वो तो इनके बच्चे पोते सब कर ही रहे होंगे, बहुत इलाज तो चलता ही है, कोई भी अपने बुजुर्ग को इस तरह छोड़ तो नहीं देता है। निश्चित रूप से ये सब प्रयास कर रहे होंगे, जो नहीं करते उन्हें करना चाहिए।
बिल्कुल, मतलब योग दोनों प्रकार से कार्य करेगा, इन्हीं की आयु भी बढ़ा सकता है और साथ ही यदि इन्हें तकलीफ है तो इन्हें मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। चलिए आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सभी दर्शक बहुत आनंदित हुए होंगे, लाभान्वित हुए होंगे और हम तो कामना करते हैं कि सभी की समस्याएं जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों जीवन में बहुत सारी समस्याएं तो रहती ही हैं और लगातार आप अपनी समस्याएं हम तक प्रेषित करते रहते हैं। एक कामना हमारी हमेशा रही है कि आपका जीवन हर प्रकार की समस्या जो है उससे मुक्त रहे और आप समाधान युक्त रहें, क्योंकि जब जीवन में समस्या रहती है तो हम जीवन का संपूर्ण आनंद नहीं ले पाते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारे पुण्य कर्म भी हमें बहुत मदद करते हैं। यदि जीवन में पुण्य कर्म है तो सचमुच जीवन समस्याओं से मुक्त रहता है। इसलिए मैंने शुरुआत भी की थी कि हम अच्छे कार्य जहां भी हमें करने के अवसर मिले, किसी को मदद करने का अवसर मिले, हम अवश्य मदद करें। डॉक्टर होवार्ड केली ने ना जाने कितने बार दूध पिया होगा अपने जीवन में, लेकिन वो एक गिलास दूध उन्होंने याद रखा जो उस लड़की ने उसे पिलाया था। वास्तव में हमें भी जब जीवन में ऐसे अवसर मिलते हैं हमें जरूर ऐसे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपके जीवन में भी ऐसे अवसर जरूर आए होंगे जहां किसी ने आपकी मदद की होगी। बहुत लोग आए हैं गए हैं लेकिन आप उस व्यक्ति को नहीं भूलते हैं जिसने आपकी मदद ऐसे समय में की जबकि सचमुच आपको उसकी मदद की आवश्यकता थी। और वैसे मित्रों अभी गर्मी के दिन आ गए हैं, चलिए हम मनुष्यों की मदद तो करें ही करें लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि पेड़ पौधे और साथ ही जीव जंतुओं की भी मदद आप अवश्य करें। जो पेड़ सूख रहे हों उन्हें पानी अवश्य दीजिएगा और अपने घर के बाहर भी थोड़ा पानी जरूर रख दीजिए, कुछ दाने डाल दीजिए ताकि जो पक्षी प्यासे हैं भूखे हैं उन्हें ग्रहण करें, क्योंकि मनुष्यों से तो दुआ हम लेते ही हैं, क्यों ना पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की दुआ भी हम प्राप्त करें। यही तो वास्तव में मानवता है ना, तो ये कार्य भी जरूर कीजिएगा, आप पाएंगे कि जीवन सुकून से भर रहा है, समाधान से भर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू कल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान,
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान समाधान समाधान।